शांति। आज राजयोग की प्रयोगशाला का 14वां दिन है और आज की साकार मुरली तो इतने पॉइंट्स है उसमें कि यही कंफ्यूज हो गया था कि कौन कौन सा ले क्योंकि सभी पॉइंट्स पे मतलब उस पर बस एकदम पूरा ऐसे बहुत ही मतलब मुरली में बहुत ही उतना डीप तो पता नहीं कितना जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसमें से मेन पॉइंट्स लेके हम उस पर। तो आज की मुरली में से कुछ पॉइंट्स जितने हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं योग के लिए, प्रयोग के लिए, हर कुछ के लिए। पहले तो यही कन्फ्यूज़ हो रहा था, साकार मुरली है कि अव्यक्त मुरली है पढ़ते समय। तो अभी इंग्लिश क्लास में भी हमने बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स देखे और उसमें हम योग के प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला एकदम सीरियल वाइज नहीं ले रहे, कोई भी पॉइंट्स लेके उस पर, जैसे बाबा ने कहा कि हमारा मन मंदिर हो जाए और उसके जो फ्रेग्रेंस, उसकी सुगंध हो, चारों ओर फैलती रहती है मंदिर की, तो उस पर मेडिटेशन करेंगे। मन को मंदिर अर्थात मन जो है क्या है, संकल्प करता है। और संकल्प कहाँ से आते हैं, जब आत्मा बिना शरीर के है तो संकल्प से रहित है, संकल्प नहीं है। जब वो शरीर धारण करती है तब संकल्प आते हैं। और संकल्प के बहुत सारे स्रोत हैं, देखना, सुनना, मतलब वो कर्मेंद्रियों से जुड़ा हुआ है। और बाबा ने भी कहा कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, कर्मेंद्रियों को अपने वश करना है, विकारी कर्मेंद्रियों को। तो उसके लिए मन संकल्प हमारे बहुत पवित्र होने चाहिए। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को थोड़ा क्लब करके और फिर एक मेडिटेशन करेंगे जिसको लव टेंपल मेडिटेशन कह सकते हैं। तो उसमें जो हमारा शरीर है, शरीर क्योंकि मन तो सूक्ष्म है, उसको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो इस शरीर को ही हम एक मंदिर के रूप में विजुलाइज करेंगे। और उसमें मैं आत्मा, उसमें अपने आप को कोई भी देवी या देवता के, क्योंकि जब हम थोड़ा सा फिजिकली कुछ एक्टिव करेंगे, मतलब कुछ परफॉर्म करेंगे, तो हमको याद रहेगा मुरली के पॉइंट्स भी साथ में। तो सिर्फ सीटिंग नहीं करना है, उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे मंदिर है, मंदिर में मैं अपने आप को कोई भी देवी या देवता जो आपको कम्फर्टेबल हो उसको विजुलाइज़ करेंगे। अपने फिजिकली वैसा करना है जैसे हम लोग चीगोंग करते थे, तो वैसे उस टाइप का थोड़ा सा। तो उसमें क्या करना है, जैसे कोई मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर विजुलाइज करना है, जितना बड़ा जैसा आप चाहें। और उसमें जैसे कई सारे सामान बाबा ने दिए, या फिर जैसे स्नेह और शक्ति, या फिर और भी कई सारे, तो उसको अपने अंदर वो गुण को धारण कर और देने हैं। तो मैं इस मंदिर में देवी या देवता हूँ, और फिर दूसरों को दे रहे हैं। जैसे स्नेह और शक्ति, तो सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर मंदिर को विजुलाइज करेंगे। यह शरीर जैसे एक टेंपल है, शरीर का एक एक अंग जैसे मंदिर का एक एक ईंट है, और बहुत ही पवित्र है। इस मंदिर की मैं चैतन्य देवी और देवता हूं। अपने आप को अष्ट शक्तिधारी दुर्गा के रूप में देखेंगे, और अपने हाथों का जो फॉर्म है उस तरीके से लेंगे। एक हाथ में ज्ञान रूपी त्रिशूल है, और दूसरे हाथ में स्नेह भरी पालना, मेरे सामने लाखों भक्त हैं। और एक हाथ से सत्य ज्ञान से संपन्न इस त्रिशूल से सर्व आत्माओं का हृदय विदीर्ण कर रही हूं। वहीं दूसरे हाथ से स्नेह भरी पालना देकर सबके मन को शांत कर रहे हैं। मैं हनुमान हूं, एक हाथ में गदा तो दूसरे हाथ में प्रेम भरे पालना के आशीर्वाद। इस गदा में पवित्र संकल्पों का संग्रह है, वहीं दूसरे हाथ में परमात्म प्रेम की पालना है। जो भी मेरे सामने आता है उसको शुद्ध संकल्पों के संग्रह का गदा से उसके अंदर के सभी अशुद्ध संकल्प समाप्त कर रहे हैं, और उसके पश्चात दूसरे हाथों से उसकी प्रेम भरी पालना कर रहे हैं। हाथ नीचे करेंगे। तो एक थोड़ा सा क्लब करके मंदिर का, और जो बाबा ने कहा कि हमें दूसरों को कैसे सेवा करनी है, तो उसके बारे में, क्योंकि सेवा तो एक हम सोचते हैं कि ज्ञान सुनाना ही सेवा है, जैसे किसी को ज्ञान सुना दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के अंदर के भाव को समझें और उसको बदलने का पुरुषार्थ करें। उसके पहले पहले स्वयं के जो अंदर जो भी निगेटिविटी है, या फिर व्यर्थ संकल्प या शुद्ध संकल्प है, उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो दूसरों को तो चेंज करना मुश्किल है। और दूसरों को भी अगर चेंज करना है तो कई बार हम चाहते हैं कि अपनी बातों से, फिर ज्ञान सुनाकर। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि वरदान में जो कही उसको अभी ले रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान की बात है, क्योंकि ऐसा मतलब अपने ज्ञान से किसी का सत्य मतलब वो जो होना चाहिए उससे किसी का हृदय विदीर्ण कर दो, इतनी हमारी जो बातों में बोल में पावर हो। लेकिन वो कब आएगी, जब उस सत्य को अपने अंदर हमने समाया होगा। सिर्फ बोल के हम बोलेंगे तो सामने वाले को कभी नहीं लगेगा उसको, क्योंकि उसके अंदर में स्नेह नहीं है, सिर्फ वो ज्ञान भरी बातें हम उनको बता रहे हैं। लेकिन उस ज्ञान जैसे कोई माँ किसी बच्चे की पालना करती है तो डांटती है मारती भी है, लेकिन उसके साथ में एक प्रेम भरा होता है, उसमें उनका स्वार्थ नहीं होता है, प्यार से वो मारने के पीछे भी उनको उनका एक प्रेम होता है ताकि इनकी जो आदतें हैं वो बदले, इनका भविष्य अच्छा हो। तो वैसे ही बाबा भी हमें कह रहे हैं, लेकिन कई बार इसका अपोजिट हो जाता है, हमें दूसरी बातें पकड़ लेते हैं कि दूसरों को हम बताएं, लेकिन उसमें जो स्नेह वाली चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है। बाबा ने तो कहा है ना कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है, लेकिन उसमें स्नेह है वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो अस्नेह दिखाना भी नहीं है ज़्यादा, अंदर से वो स्नेह होना चाहिए, एक अपनापन का भाव होना चाहिए। और उसके लिए सच्चा प्रेम जो बाबा ने कहा उसकी डिफिनेशन यही है कि सबके प्रति स्नेह हो। और दूसरा बाबा ने आज फूल, और कितनी बार बाबा ने कहा हे मेरे प्राणों, हे मेरे बच्चों, मतलब इतना बार कहा है, मुरली पढ़ते ऐसा लग रहा था कि एकदम दिल पे हमारा ही हृदय विदीर्ण हो रहा है, मतलब उसमें कहा दूसरों का करो तो मुरली पढ़ते पढ़ते खुद का ही हो रहा था। और मैंने भी शायद इतनी मतलब एकदम डीप मुरली पता नहीं बहुत ये लगा, तो पहले तो फैल गए कि इसमें से क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दूसरा जो फ्लावर का है कि फूल हूँ मैं, आप फूल हो, और फूल कैसे रहते हैं, फूल हमेशा सुगंधित सुगंध देते हैं। और दूसरी चीज़ है फूल कभी भी किसी से कम्पीट नहीं करते हैं, मतलब उनको ये नहीं है कि कौन सा फ्लावर कितना सुगंधित है, कौन सा फ्लावर क्या है, वो जस्ट ब्लूम्स, वो खिल जाते हैं, उनको कुछ ये नहीं रहता है कि वो फ्लावर कैसा है, ये फ्लावर कैसा है। तो जब मैं फूल हूँ अर्थात मेरे साथ में जितने भी हैं सभी फूल हैं, और जो भी हैं मुझे उससे नहीं, मुझे खिल जाना है और मुझे सुगंध देना है, तो यहाँ पे कंपटीशन का भाव ख़त्म हो जाता है, तो सच्चा प्रेम स्वतः ही हो जाता है। तो बाबा ने फूल कहा है, तो हम अपने आप को फूल के रूप में मेडिटेशन करेंगे, फ्लावर मेडिटेशन। इसमें क्या करना है, फूल से पहले क्या होती है कली, और फूल का तो एक पेड़ होता है, पेड़ कहाँ जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और उसकी नरिशमेंट कैसे होती है, मतलब उसको ऊर्जा उसकी शक्ति वो कैसे होता है उसको भी करके, क्योंकि पूरा फूल उसमें अपने आप को संभाल लेना है। बाबा ने आज कहा है ज्ञान की डीप गहराई में जाना है, सिर्फ सुन के और रिपीट करके तो वो उसमें उल्टा हो जाता है, मतलब ये शायद बहुत कम हाँ माया का परछाई, और ज्ञान वो ज्ञान का ही उल्टा इफेक्ट होता है, तो माया आ जाती है और साथ में हम ज्ञान को ही लेके गलत काम करते हैं और बोलते हैं बाबा ने तो ये कहा है, अकल्याण हो जाता है। ज्ञान के ही पॉइंट लेके हम अकल्याण कर रहे हैं, तो एक ऐसा बात है कि भगवान के बातों को ही लेके अकल्याण कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने उस ज्ञान को उस रीति से सुना ही नहीं, हमने सिर्फ सुना रिपीट किया और बस चल रहे हैं, और उसमें कितना डीप मीनिंग है, बाबा क्या कहना चाहते हैं और उस पर क्या करना है, क्योंकि कई तरह की बातें होती हैं। आज जो बातें उसका जस्ट अपोजिट हो सकता है कि वैसे ही ऐसा लगेगा, तो हम अगर मुरली पे लेके अगर किसी से बहस करनी हो तो कितने अच्छे से कर सकते हैं चाहे कुछ भी। तो इसलिए फूल बन जाना है और उसको डीप में महसूस करना है कि फूल कैसे, जो फूल होता है कैसे खिलता है, कैसे मतलब उसके पेड़ जो होते हैं कैसे बड़ा होता है, फिर उसमें फ्लावर कैसे आते हैं, कब कब आते हैं, कैसे सुगंध आते हैं और लोगों को कितने खुश कर देते हैं, जब वहाँ से कहीं से निकलो और एक फ्लावर का सुगंध आता है, जैसे चमेली का फूल है सुगंध देता है, फिर बहुत दुखी हैं और कोई फ्लावर लेकर उसका सुगंध लो पूरा मूड चेंज हो जाता है। तो हमें फूल बनना है, तो सबसे पहले अपने पैर को नीचे रखेंगे, क्योंकि फूल का जो पेड़ है जड़ें हैं जमीन से जुड़ी हैं, और हमारा शरीर जो है फूल दो, इसलिए हाँ फूल देने का, क्योंकि फूल में इतना सिर्फ सुगंध ही देता है, उसके पास दुर्गंध करके कुछ है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कितना भी मुरझा जाए दुर्गंध तो एटलीस्ट नहीं देता है। तो मैं फूल हूँ, मैं आत्मा फूल हूँ, ये शरीर क्या है, फूल का जो पेड़ होता है वो है। और अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे मतलब फील करने के लिए, और जब हाथ दुख जाए तो आप नीचे रख सकते हैं, पेड़ है ना। हाँ ठीक है, अगर हाथ दुख जाए तो कर सकते हैं, नहीं दुखे तो ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि इस ये पोस्चर जो हम कर रहे हैं ना, इसके पीछे राज है कि इससे हमारे बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी आती है। और इस क्या होता है कि एक तो हम बैठे हैं सो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें क्या है अगर थॉट नहीं भी आ रहे तो वो एनर्जी आ रही होती है, वो फील होता है हाथों से, वाइब्रेशन से। तो इसके लिए ऐसा कर रहे हैं, बैकबोन हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, और पैर जो है अभी क्या महसूस करने कि हमारा जो पैर है ये जड़ें हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, और फिर ये पूरा शरीर है वो फूल का, जैसे गुलाब का फूल है सबसे सुगंधित, जो बाबा बहुत बार नाम लेते हैं नहीं हमारे में भी कांटे भी हैं ना, फूल पेड़ में ही कांटे हैं, तो सब में हैं, फूल भी हैं और कांटे भी हैं। तो अपने हाथों को ऐसे जैसे पेड़ का स्ट्रक्चर का बना रहे हैं, और पैर ट्री मेडिटेशन, और पहले और इसमें एक बार देख लेंगे, जैसे हाथ ऐसे है, जब मैं फुल ब्लाउड मेडिटेशन पे ब्रेथ श्वास को भी हम देखेंगे, श्वास अंदर लेंगे तो ये जैसे कली, फूल पहले कली के रूप में होती है तो ऐसे कली है ना, तो सबसे पहले तो ऐसे पेड़ बन के पूरा नरिशमेंट लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कली का निर्माण होगा, जब कली बनेंगे तो ये हाथ ऐसे आएगा, और श्वास जब अंदर लेंगे थोड़ा लंबा श्वास लेंगे, श्वास अंदर लेंगे तो महसूस करेंगे ज़मीन से ऊर्जा मतलब नरिशमेंट आ रही है, जो भी मिनरल्स और ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती है पेड़ के लिए, पोषक तत्व आ रहे हैं, ऊपर से सूर्य की किरणें आ रही है, और शिव बाबा जो परमात्मा हैं उनसे जो सुगंध है, जो फ्लावर में फ्रेग्रेंस है वो परमात्मा से आ रही है। तो सबसे पहले अपने हाथों को दोनों तरफ ऊपर की ओर, और महसूस करेंगे कि ये जो पेड़ है, अभी ये फूल का सिर्फ पेड़ है, और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, ग्रो कर रहा है, धरती से पोषक तत्व ले रहा है, हवा से जो भी जरूरी आवश्यक तत्व है वो अपने में समा रहा है, सूर्य की किरणों से ऊर्जा ले रहा है, धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा हो गया है, और अब इसमें कलियां आ रही हैं, मैं आत्मा वो कली हूं। अपने हाथों को सामने की ओर लाएंगे कली के रूप में, श्वास जब अंदर लेंगे तो एक ही साथ पैरों से, धरती से पैरों की, पैरों के द्वारा पोषक तत्व मुझ कली में आ रही है, और सूर्य की किरणों से ऊर्जा आ रही है, और परमात्मा से सुगंध आ रही है, एक साथ ही सारी चीजें मुझ कली में आ रही है। जब मैं श्वास ले रहा हूं तो मेरे अंदर वो सारी शक्तियां, ऊर्जा, पोषक तत्व भर रहे हैं, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो फूल खिल रहे हैं, तो फूल को खिलता हुआ ये हाथों को फैलाएंगे, ऐसा 10 बार करेंगे, श्वास अंदर, श्वास बाहर, मैं खिलता हुआ फूल हूं, श्वास अंदर, मेरे अंदर सारी शक्तियां आ रही है, महसूस कर रहा हूं धरती से ऊर्जा पैरों के द्वारा एक एक अंग को शीतल करती हुई ऊपर की ओर आ रही है, पैर, घुटना, थाइस, कमर, पेट, छाती, चेहरा और मुझ कली में, उसी प्रकार ऊपर से सूर्य की किरणें पत्तों पे, डाल डालियों पे, जैसे शरीर ही एक पेड़ है, और फिर परमात्मा की किरणें मुझ कली पे पड़ती है और बहुत ही सुगंधित हो रहा हूँ। मेरे से सुगंध चारों ओर फैल रही है। श्वास अंदर, श्वास बाहर। ओम शांति। इसमें वो क्या है कि जब ब्रेथ इन श्वास इन करते हैं ना, तो उसमें फिर बोल के वैसा, तो उसमें बस एक बार समझ समझ के महसूस करके खुद से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक तरह से एनर्जी, मतलब इसमें बहुत अच्छी एनर्जी सर्कुलेट भी होती है हमारी बॉडी से, क्योंकि यहाँ पे हम सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, प्रकृति का भी और साथ में बाबा तो है ही हमारे साथ। तो क्योंकि क्या है, जो सुगंध है वो आत्मा के गुणों से आते हैं। आज बाबा ने कई तरह के गुण बताए हैं जो कि आत्मा के गुण हैं। कितने तरह के हैं? निर्माण, निर्भय, निर्लोभ, निर्मोह, शीतलता, मिठास, अंतर्मुखता, सबसे पहला जो अंतर, और धैर्यवत पे काफ़ी जोर दिया। तो इस पे हम एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें दो चीज़ें हैं। बाबा ने कहा कि आपको ये धैर्यता आपके अंदर होनी चाहिए। इसमें दो तीन पॉइंट ऐड करेंगे, जैसे धैर्यता, फिर साक्षी, बाइस्कोप की सारी चीज़ें, बाइस्कोप है, उसमें एक पावरफुल मेडिटेशन करेंगे जिसमें अपने धैर्य, हमारे धैर्य का परीक्षा होगा कि हमारे अंदर कितना धैर्य है या फिर हमने कितना ज्ञान को धारण किया है। जैसे ऐसे तो हम बोल देते हैं कि बाबा ने वैसे मुरली में इस पर जोर दिया है कि जैसे हमारे साथ में जो रहते हैं या फिर उनसे कुछ पेपर आए तो वहाँ पे धैर्य धारण करना है, लेकिन उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम जो अटैच हैं, और जब उसके पेपर आते हैं तब हमारी क्या अवस्था होती है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोग ही हैं, चीज़ें हैं, हमारे संकल्प हैं, हमारे पास्ट की चीज़ें हैं, वो जब एकदम से अचानक से सामने आ जाती है तो हमारी अवस्था एकदम हिल जाती है या फिर। तो वैसा एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें कुछ नहीं करना है, बस साक्षी और धैर्य, और हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो हो सकता है हमने सोची ना हो, और सबके साथ अलग अलग हो सकता है। किसी एक, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो सामने आएंगी सबके पेपर अलग अलग हैं और यूनिक हैं, और उसके साथ वही पेपर आएगा जिससे वो जुड़ा हुआ है। हम समझते हैं कि हमारा लोगों से कोई ये नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, मतलब सबसे मैं डिटैच हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं अटैच हो गए हैं, उसका ही पेपर आएगा अंत में, जो बाबा कहते हैं एक सेकेंड का पेपर होगा। तो बाबा ने कहा है कि हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस, रिहर्सल हमें करनी है, और रिहर्सल रोज़ करनी है, क्योंकि वो तो मुझे नहीं पता कि वो अंत समय कब आएगा, कब आएगा। तो और रिहर्सल किस चीज़ की करनी है, इसके लिए तो हम सबसे पहले पता चले कि हम अटैच किस से हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो दिखता है कि हाँ इससे हम अटैच हो सकते हैं, हम उसको विजुअलाइज़ करेंगे, और बाकी हर कोई अपने अंदर जाके अंतर्मुखी होकर देख सकता है कि और मैं कहाँ कहाँ अटैच हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अटैच हो सकता है सामने वाला वो ना हो। तो एक मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को एक समुद्र के टापू पे बैठा महसूस करेंगे। मेरे सामने अथाह सागर है, और बस मैं इस सागर की लहरों को देख रहा हूं और कुछ नहीं, बस निश्चिंत बैठे हैं और सागर की लहरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, कभी बहुत तेज तो कभी हल्की, कभी लहरों की बूंद मेरे ऊपर आ रही है, कभी दूर से ही चली जा रही है। मैं साक्षी हो इन लहरों को देख रहा हूं। धीरे धीरे कुछ शरीर दिखाई दे रहे हैं इन लहरों से आते हुए, एक दो, और जाने पहचाने लग रहे हैं और मृत हैं। मैं बस देख रहा हूं, मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूं, ना कुछ उनके बारे में कोई चिंतन कर रहा हूं, बस देख रहा हूं। जब अमृत शरीर मेरे सामने आता है तो मैं देखता हूं कोई मेरा बहुत अपना है, परिवार का है। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे मृत शरीर मेरे सामने, मेरी पूरी फैमिली, पूरे दोस्त, लौकिक अलौकिक। मैं बस साक्षी को देख रहा हूं। ये वही दोस्त है जिसके साथ घंटों बातें किया करते थे, वही माता पिता हैं जिनने हमारी बचपन से पालना की, हमें पढ़ाया, हमें बड़ा किया, हमें कुछ काबिल बनाया। वही टीचर हैं जिनने दुनियावी ज्ञान से हमें भरपूर किया। यहाँ पे कुछ और भी आत्माएं हैं जो ज्ञान में आने के बाद मिले, जिनने हमें परमात्मा का परिचय दिया। ये सभी बस मेरे सामने लहरों में, इनका शरीर वो कोई चैतन्यता नहीं, और बस मैं साक्षी हो देख रहा हूं। धीरे धीरे मेरी चीजें, मेरा मोबाइल, वो इंटरनेट से जुड़े सारे लोग मेरे अंदर का ज्ञान कुछ नहीं, वो स्थान भी समाप्त हो चुका है। सब कुछ मुझे दिख रहा है सामने, मेरी कला, मेरे गुण, जो मैं मेरा समझता था, वो सब जैसे कि कुछ नहीं है। सब कुछ समाप्त हो चुका है, दुनिया जल रही है, उसमें एक शरीर ऐसा है जिसको मैं कुछ ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, और वो मेरा ही शरीर है। अब तक मैं अपने आप को समझता था कि मैं जिंदा हूं और बाकी सब मरे पड़े हैं, लेकिन तो मेरा ही शरीर है जो खुद समुद्र के लहरों में गोते खा रहा है, वो भी मेरा नहीं। मैं बस अभी कोई भी नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं, ना कोई चीज, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना ही कोई स्थान, ना प्रकृति। अभी बस एक ही सहारा है, परमात्मा। उस समय मेरे अंदर से जो पुकार निकल रही है, मैं अपने आप को देख रहा हूं, मेरे ऊपर धीरे धीरे एक प्रेम की बरसात जैसे हो रही है, और बाकी सारी चीजें जैसे धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने से ओझल हो रही है, और मैं इस प्रेम में समाते जा रहा हूं। और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो भी सारी चीज़ें मैंने देखी वो बस एक बाइस्कोप जैसी थी, उसमें कुछ भी सच्चा नहीं था। न पहले जो लोगों के साथ थे वो भी एक बाइस्कोप थी, और बाद में भी मेरा जो सच्चा स्वरूप है वो प्रेम स्वरूप है, परमात्मा प्रेम, यही मैं हूँ। बाकी सारी चीज़ें, अच्छा बुरा खट्टा मीठा, सब कुछ एक बाइस्कोप है, ड्रामा है, और मैं सबसे डिटैच्ड हूँ। ओम शांति। ये तो एक मेडिटेशन हो गया, लेकिन सच में जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हम बहुत हिल जाते हैं। बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि प्रेम बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रेम से पहले ज्ञान, क्योंकि प्रेम तो भक्ति में भी करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, कोई भी आके कहता है ये करने से तुमको भगवान मिलेगा तो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रेम तो है और प्रेम से कर रहे हैं, उनकी भावना बहुत सच्ची होती है, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने सबसे पहले हमें ज्ञान दिया है, इसलिए आज कहा है कि ज्ञान से प्रेम अंधा होता है, और प्रेम के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रेम ज्ञानमयी प्रेम है तो वो सही है, नहीं तो कहीं पे भी हम फंस सकते हैं, वो कहीं पे भी हो, ज्ञान में भी हो, भक्ति में भी हो, कहीं पे भी हमारा फ़ायदा उठाया जा सकता है, सिर्फ प्रेम है तो, ज्ञान नहीं है तो ज्ञानमयी प्रेम। ज्ञानमयी प्रेम क्या है कि जो बाबा सुना रहे हैं उसको उसके अनुसार हम उसको समझें। और प्रेम तो दिल का है, बाबा ने कहा मन रूपी दिल रूपी मंदिर, तो मन भी मंदिर हो जाए, दिल भी मंदिर हो जाए, तो वो कितना प्योर वाइब्रेशन हमारे हो जाएंगे। और एक बात कही कि जो ज्ञान है या फिर वो नस नस में हमारे नस नस में चला जाए, शरीर की शक्ति बन जाए, ताकत बन जाए, ईश्वरीय ताकत है, तो अभी अपने नस नस में उसकी ताकत को समाना है, खून में समा जाए, एक एक जो शरीर के हर कुछ में, मतलब हम जिससे भी जुड़े हैं उसमें वो ईश्वरीय ताकत समा जाए, हमारे एक एक पोर्स, एक एक मतलब बॉडी का जो भी है सब में समा जाए। तो उसके लिए अपने शरीर को कुछ भाग में डिवाइड करेंगे, ऊपर से नीचे तक, पूरा सर से लेके पैरों तक, मन से करना है इसमें कुछ। और फिर देखना है कि शिव बाबा की किरणें ऊपर से आ रही हैं, और जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किए हैं वहाँ वहाँ सारे एक एक अंग अंग में वो फैलते जा रही है, पूरा ऊपर से नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ओम शांति। अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक कई भागों में विभाजित करेंगे, सबसे ऊपर सिर के ऊपर का भाग, दूसरा भ्रिकुटी, तीसरा छाती, चौथा पेट, पांचवा कमर, छठा घुटना, सातवा तलवे, भी अपने आप को ब्रह्मांड के बीच में महसूस करेंगे, इस धरती के गोले के ऊपर, और ऊपर से बाबा की किरणें मेरे सिर के ऊपर आ रही है, और मेरे मस्तक के अंदर एक एक नर्व्स, एक एक ग्लैंड्स सब में प्रवेश कर रही है, मेरा एक एक मस्तक का एक एक ग्लैंड जैसे इनलाइटेंड हो रहा है, जागृत हो रहा है, मेरा मन अमन हो रहा है, संकल्प रहित, और नीचे की तरफ आ रहे हैं। भ्रिकुटी, पूरा चेहरा, एक एक अंग जैसे प्रफुल्लित हो रहा है। आंख पवित्र हो रहे हैं, कान, चेहरा, होंठ, गला। फिर एक किरणें मेरे छाती के ऊपर आ रही हैं और मेरे दिल की धड़कन जैसे शांत हो रही है और एक एक अंग, फेफड़े, हार्ट, कंधा, सब में जैसे एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ईश्वरीय ताकत समा रही है, उस ताकत को अपने रगों में, नस नस में समाने दें। मेरा पेट ईश्वरीय ताकत से भरपूर हो गया है, ऊर्जा से भरपूर हो गया है, पेट भर गया है, तृप्त हो गया है और किसी स्थूल भोजन की आवश्यकता ही नहीं। कमर ईश्वरीय ताकत से, मेरा जो पीठ की हड्डी और कमर है मजबूत हो रहे हैं। दोनों पैर, तलवा, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तलवा, घुटना, कमर, पीठ, पेट, और महसूस करेंगे कि ईश्वरीय ताकत, शिव बाबा की किरणें मेरे शरीर के एक एक नस, एक एक अंग में जाकर उसमें ताकत भर रही है और मैं शक्तिशाली आत्मा बन रहा हूं। और रोज सुबह प्रैक्टिस करेंगे, सो के उठते ही मैं शक्तिशाली आत्मा हूं और अपने अंदर परमात्मा शक्तियों का संचार होते हुए विजुअलाइज करेंगे और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ओम शांति।